गंधपुष्पेत् त्वदर्थम् क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो दुग्धैर्मध्वाज्ययुक्तैर्दधिशितसहितैः स्नापितं नैव लिङ्गम् नोलिप्तं चन्दनाद्यै कनकविरचितै पूजितं न प्रसूनै धूपैकर्पूरदीपै विविधयुतै नैव भक्षोपहारै क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो
भक्त भगवान के समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं। देवं भूत्वा देवं जजेत, यह वेद वाक्य है। देवता बनकर के देवता अर्चन करो। आज जिस श्लोक का पारायण आप लोगों ने किया, अर्थ बड़ा ही सरल है और भक्त सुबह से लेकर के शाम तक जो व्यक्ति जीवन के कर्म में ही लगा रहता है, वासनाओं की पूर्ति में ही वो दिन व्यतीत करता है, जीवन भर ईश्वर अर्चा आराधना उपासना पूजा नहीं करता और ईश्वर के समीप अंतिम समय में प्रार्थना करते हैं कि न तो मैं सुबह उठ पाया, न आपके लिए मैं गंगा तोयम गंगा जल ला पाया, और एक एक करके दो श्लोकों के द्वारा शिव पूजन विधि को बतलाते हैं और वो मैं कर नहीं पाया। हे शिव, हे शंकर, इस अपराध का क्षमा करो। भगवत भक्तजन जिनके हृदय में एक विश्व अस्तित्व के प्रति विश्व आधार के प्रति विश्व नियंता के प्रति विश्वास आस्था नहीं है, वो उपासना नहीं कर सकते। ये संपूर्ण विश्व एक जीवित अस्तित्व है, जीवित सत्ता है, ऐसा बोध हुए बिना आप उपासना नहीं कर सकते। जिस प्रकार से इस शरीर जीवित है, क्यों? क्योंकि इसमें नखलोम आदि अभिवृद्धि, यह इस शरीर के द्वारा रोएं और नख का, नाखूनों का वृद्धि बढ़ना, यह जीवित अस्तित्व का पहचान है। आप जीवित है, मैं जीवित हूं, कैसे पहचाने? कहते हैं कि श्वास से भी अधिक, देखो इस शरीर में जो अभिवृद्धि है, ठीक उसी प्रकार इस संपूर्ण विश्व एक लिविंग बॉडी है, विश्वेश्वर का, उसका प्रतिबोध जब तक न हो, अंदर से एक विश्वास न हो, तो नारायण वो पूजा भी ऊपर से ही होता है। इसलिए शिव पूजा में वही अपूर्वता है। शिव पिंड के ऊपर देखिए कोई आकार नहीं है, आंख कान मुख आदि नहीं बना होता, वो निराकार में संपूर्ण समस्त सभी आकार समाहित है। इस भाव से शिव पूजन का विधि है भगवत भक्तजन। इसलिए आस्था और विश्वास जीवन को बड़ा सुगम और सहज कर देता है। आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, ये सब शब्द को हम लोगों ने संकुचित अर्थ में लेते हैं, केवल आध्यात्मक परक स्पिरिचुअलिटी को ही समझना हो तो भक्ति, श्रद्धा, आस्था, ये सब बातों को हम समझना चाहते हैं। परंतु जीवन में अगर सफलता, जीवन में अगर सफलता और विफलता में समान रहना है, तो ये आस्था, ये मूल है, इसको जब तक आप विकास नहीं कर सकते हैं, उभार नहीं सकते, जो आपके हृदय में मौजूद है उसको उभारने के लिए आप प्रयत्न नहीं किए, तो नारायण वो उपासना ही हो, व्यक्ति जीवन क्यों ना हो, वो सार्थक नहीं होता। इसीलिए पूर्व श्लोकों के द्वारा ईश्वर के समीप एक प्रार्थना कि केवल ऐन्द्रिक चेतना से जीवन सुखमय नहीं हो सकता है, नैतिक जीवन भी कहीं ना कहीं कष्ट से ऊपर उठाने में सक्षम होता है। इसीलिए जीवन भर की जो साधना है कि खुद को शुद्ध बनाओ, प्योर बनाओ, और जितना जितना वो खुद शुद्ध होता है, उनके हृदय में वो इस विश्व प्रकृति जो सत्ता वाला है, जीवित अस्तित्व वाला है, वो प्रकट होता है। केवल इंद्रियों को ही तृप्त करने के लिए जीवन नहीं है। मनुष्य एक जंतु है, एक जानवर है, परंतु वो अन्य पशु से, जंतु से अलग है, भिन्न है, यह भी परमात्मा की एक कृपा है। मैन इज ए रैशनल एनिमल हम बोलते ही हैं, एनिमिलिटी पूरा भर भर के है महाराज, और साथ साथ रैशनलिटी भी है, रैशनल भी है। आप एक पशु, एक कुत्ता, वो खुद ही पेट भरने की कोशिश करते हैं दिन भर, परंतु वही मानव की मानवता है कि वो प्रयत्न करता है, परंतु अगर सामने कोई भूखा हो तो वो खुद न खा करके भी उनको खिला सकता है। वो विचार वो विवेक उनके पास है। तो मनुष्य जीवन में ये जो एनिमिलिटी है, पशुता है नारायण, इस पशुता पर विजय पाना। हम व्यापार क्षेत्र में विजय को पा लेते हैं, परिवार क्षेत्र में भी हम विजय को पा लेते हैं, लोगों के ऊपर अधिकार भी शायद हम प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। बहुत अजब है कि व्यक्ति अपने वैचारिक तरंगों पर विजय पाना बहुत मुश्किल का काम होता है, वो नहीं पाता है। ये वैचारिक तरंगों को, ये जो कठिनाई है जीवन में, ये जो इसी को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए ही नारायण ईश्वर ने इस संसार में आपको भेजा। अगर इस संसार में कोई काम अन्य किसी से नहीं होता है, अगर होता है वो कर्म वो कार्य, तो एकमात्र मनुष्य से, आपसे। इसीलिए आपके अंदर वो शक्ति, वो दिव्यता, वो डिवाइनिटी ईश्वर ने दी है कि खुद को विकास करो और दूसरों को भी विकसित करो। और जब तक मैं खुद नहीं स्वच्छ सुंदर बन सकते, हम अन्य को भी बना नहीं सकते। जब तक आप खुद शिक्षित सुशिक्षित नहीं होते, तब तक आप अन्य को भी शिक्षा नहीं दे सकते। इसीलिए उस दिन भी मैं आपके सामने निवेदन किया था कि इस मनुष्य से कितने शक्तिधर जंतु जानवर है, हाथी शेर, परंतु वो हाथी को भी ये मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा कौशल से अपने वश में करके रखता है। केवल इतना ही नहीं, उस हाथी को आपने सर्कस में देखा ही होगा, उस हाथी के द्वारा जो जो कला, जो जो कर्म वो कराने में सक्षम होता है, बड़ा आश्चर्य लगता है कि एक हाथी वो कैसे समझ उसको है कि पानी चढ़ाओ, विश्वनाथ रख दिया और उससे करवा रहे, पानी चढ़ा रहे, फूल दे रहे हैं, फिर घंटी हिला रहे हैं और आरती के दियो सूंड से वो प्रदीप को घुमा भी रहे हैं। यद्यपि वो कर रहे, परंतु उसकी वो प्रशिक्षण किसने दिया? हाथी के अंदर शक्ति है, परंतु वो जो बुद्धि, वो जो कला, वो जो शिक्षा, वो मनुष्य ने शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित किया। और इसीलिए जब आप देखते हो तो बड़ा आश्चर्यान्वित होते हो, चमत्कृत होते हो कि वाह, एक हाथी ने एक मनुष्य जैसा काम किया। तो ये हाथी को किसने प्रशिक्षित किया नारायण? वो मनुष्य ने। इसलिए इस मनुष्य के अंदर ऐसा शक्ति, ऐसी दिव्यता, ऐसी पावर भगवान ने दिया है कि वो खुद को भी विकास कर सकता है और अन्य को भी विकसित करने में हेल्प कर सकता है। इसीलिए भगवत भक्तजन, ये जो अंदर रैशनलिटी, विचार शक्ति है, एक दिव्यता है, इसको व्यक्ति के जीवन में पहले काम में लाना चाहिए। नहीं तो हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे गुरु हमारे जीवन को कैसे प्रकाशित कर सकता है? इसीलिए व्यक्ति जीवन में अगर पशु जीवन जी रहे हैं, केवल इंद्रियों के परवश होकर के जी रहे हैं, तो नारायण हमारे जीवन में कोई भी अवसर हम सुखद रूप में अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि देवम भूत्वा, पहले देवता बनो, पशु बन करके इंद्रिय चेतना में रह करके तुम देवा अर्चन नहीं कर सकते, वो संभव नहीं है। देवता बनो और फिर देवता का अर्चन करो। जीवन में वासनाओं को जलाओ, फिर ईश्वर के पास प्रदीप को प्रज्वलित करो। जीवन को स्वार्थ से ऊपर उठाओ, फिर ईश्वर के पास वही अगरबत्ती के द्वारा, जैसे एक अगरबत्ती खुद अपने जीवन को विसर्जित कर देते हैं सुगंध को बिखर करके। व्यक्ति जीवन के स्वार्थ को मिटा करके इस जीवन से जितना हो सके ईश्वर के चरणों में अर्पण हो जाओ। यही तो हमारे पंच जो धूप दीप नैवेद्य ये सब है, गंध पुष्प, ये पांच हमारे जीवन को पांच प्रकार के शिक्षा देते हैं। और उसको जान करके जब हम ईश्वर के समीप पहुंचते हैं, उनकी अर्चना करते हैं नारायण, वो प्रत्येक अर्पण, प्रत्येक दर्शन, प्रत्येक क्रिया वो व्यक्ति को परिशुद्ध करते रहते हैं। इसीलिए आचार्य शंकर इस दो श्लोक के द्वारा किस प्रकार एक शिव पूजन विधि बतला रहे हैं। जो विधि से हम चुक है, हे ईश्वर, अब तुम मुझे क्षमा करो। इसीलिए भगवत भक्तजन, अपनी पूजा हम तभी कर सकते हैं, अपनी वासनाओं को पहले आग लगाओ। आप लोगों ने वृंदावन गए, वृंदावन में लाला बाबू के मंदिर भी शायद दर्शन किए ही हैं, उनके जीवन को थोड़ा विचार कर लीजिए। वो भी हमारी जैसा एक घर गृहस्थ वाला व्यक्ति था, वो भी किसी के अधीन होकर के ही जीवन निर्वाह करता था, किसी के काम में काम करता था। हाँ, इतना है कि वो राजा के राज दरबार में मंत्री थे, फिर भी एक पराधीनता, एक अधीनता तो है। राजा ने उनको आज्ञा दिया कि जाओ इस जो कर राज खजाना है, जो सब लोग देते हैं टैक्स, उस टैक्स का वसूली करके आओ। और महाराज वो द्वादश शताब्दी की होगी घटना, और वो कर वसूलने गए। सायंकाल हो गया, गंगा तट तट वो वापस आ रहे राजमहल की ओर, अपने कक्ष की ओर। अचानक उनको एक शब्द सुनाई पड़ता, क्या है? कोई लड़की अपनी पिता को बुला रही है कि पिताजी पिताजी, ये सायंकाल तो होने जा रहे हैं, अब कुछ ही देर में चारों तरफ अंधकार, अभी भी आप सो रहे हो, क्या आप अपनी वासना में आग नहीं लगाओगे? वासना शब्द का अर्थ है वहां वो जो पत्तों को इकट्ठा करके रखते हैं उसको, तो सायंकाल होने के पहले उसमें आग लगा देना पड़ता है। तो वो लड़की अपने पिता को बुला रहे, सोए हैं दोपहर को, उसको जगाते हैं, सायं होने जा रहा है, बीत रहा है समय, जगो और उसको आग नहीं लगाना है क्या? लाला बाबू के मन में वो शब्द नारायण छुप गया, बोले सच तो हमारे जीवन में भी एक के बाद एक वासना, और उस वासनाओं को हमने अभी तक आग लगा नहीं पाए। लाला बाबू के साथ और भी लोग था, किसी के मन में देखो कोई वो शब्द स्पर्श नहीं किया। लाला बाबू बिल्कुल बेमन हो गए, और वो नदी तट तट वो जा रहे, और एक शब्द उनको आघात किया। वहां एक स्त्री अपने पति को थोड़ा गुस्से के आवाज स्वर में डांट रही है कि तुम्हारा जीवन केवल ये सोते सोते ही बीता, अरे कुछ करो जीवन में, परिवार है, संसार है, सो करके रहने से कुछ नहीं मिलेगा। सोते सोते ही जीवन बिता। लाला बाबू के यह फाइनल और लास्ट वर्ड्स उनके जीवन में। लाला बाबू एकदम निश्चित हो जाता है कि देखो हमारे जीवन भी वासनाओं को हमने जला नहीं पाया, और जीवन तो भाई व्यर्थ कर्म में, कामनाओं में बिताया, ऐसे करके तो चलने वाला नहीं है। और फिर वो एक समय आता है अपने सह साथियों से सारा जो भी वसूला दिन भर पैसा वो सब देता है, राजा की ओर से उपहृत जो माला है राज दरबार से वो भी खुल करके उसकी वो अर्पण कर देता है, ले जाओ राजा को दे देना। सब लोगों ने पूछे क्या बात है क्यों, कहते बस हमारे जीवन का जो कर्म था वो हमने कर लिया, अब जीवन में किसी का नौकरी करनी है तो नारायण वो जगदीश्वर का नौकरी करो। और उस गंगाम्बुधि को पार करके वो चल पड़े और ईश्वर के लिए इस जीवन को उत्सर्ग कर देते। इसीलिए नारायण जब तक ये जो कामना है, ये वासना है, ये वासनाओं से जीवन प्रेरित है नारायण, तो ये वासना कभी भी सुख का आस्वादन नहीं करा सकती। कहीं न कहीं हमारे जीवन में इस वासनाओं को, वासनाओं पर अंकुश डालना होगा, और वासनाओं पर अंकुश डाले बिना नारायण उनके जीवन में वो सुखद अनुभूति, ईश्वर अस्तित्व के प्रति सजागता वो प्राप्त नहीं कर सकते। और इसीलिए यही है विचार, ये जो मैंने कहा मैन इज ए रैशनल एनिमल, ये रैशनलिटी है क्या? जगत संसार के आलू विंडा इसमें विचार करने के लिए है, परंतु उससे भी अच्छा कुछ सद विचार भी हमारे से हो जाए। केवल इस जीवन में आहार, निद्रा, भय और वंशज, इतना ही नहीं, आपसे हमसे निकृष्ट पशु जोनी है, इसीलिए कि उनके अंदर धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, हमारे में जो धर्म चेतना है वो उनमें नहीं है, इसीलिए आप श्रेष्ठ है, आप पशु नहीं है, आप मनुष्य है। ये प्रोसेस, इवोल्यूशन प्रोसेस की क्रम विकास के आप मध्य में हैं, ये आपके फाइनल और लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है। आप मनुष्य जोनी प्राप्त किए हैं, आपको और चलना होगा, क्योंकि हमारी यात्रा, हमारी जर्नी जो है वो पशुता से प्रारंभ होते हुए मनुष्य तक पहुंचे। आपने नारायण विकास किया, प्रोग्रेस किया, साधना किए, आप मनुष्य बने, परंतु ये मनुष्य जीवन ही लास्ट नहीं है, आपको जाना है देव। इसलिए पशु, मानव, देव, तो ये मानव के अंदर कहीं ना कहीं दानवता मौजूद होते हैं, इसीलिए वो मानव भी पुनः पशु तक जाने के लिए बाध्य हो जाता है। और ये विकास करते 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 वो व्यक्ति, वो आप ईश्वर बन सकते हैं। इसीलिए नारायण हमारे इवोल्यूशन प्रोसेस में जब हम देखते हैं, और हमारे शास्त्रीय इवोल्यूशन को जब हम देखते हैं, जितने जितने आप उन्नति किए हैं उतना ही आपके अंदर क्रिया शक्ति और आनंद आनंद की प्रतिवर्धन हुआ। एक पशु, एक कुत्ता, कितना भी उसके लिए व्यवस्था आपने की हो, परंतु आप कितने भी कष्ट में रहते हो उससे आप आनंदित हो। एक भिखारी ने किसी बांग्लों के सामने बैठ बैठ करके भिक्षा मांगता था और ऊपर से देखता था नीचे शिकारी, देखो बांग्लों के मालकिन के बेटी वो कुत्ता को कितना प्यार करके गोदी में लेकर के घूमता है, उनके लिए गाड़ी, दो तीन नौकर। और वो भिखारी सोचता था कि देखो क्या जीवन मिला हमको, ये कोई जीवन है? एक मनुष्य जोनी मिलकर के भी भिक्षा मांग मांग, वो भी पेट भरता नहीं, मांग कहां तक, कब तक चले गई है? भगवान से प्रार्थना करते, काश मेरा दूसरा जन्म दे दे तू, तो कुत्ता का जन्म देना, वो भी इसी मालकिन के घर में, कहीं अन्य नहीं। बताओ, कभी कभी हम भी प्रार्थना कर लेते लेकिन थोड़ा सजगता के साथ ना रहन। कोई कुत्ता जोनी दे देना। तो एक संत आया कि भाई तूने क्या प्रार्थना किया, बिड़बिड़ाया, क्या बोल रहा? बोले बस क्या बोलूं, भगवान को बोला कि अगर दूसरा जन्म देता तो कुत्ता जन्म देना। अरे ये कोई जीवन है? ये कोई जिंदगी है? इतनी कष्ट, शारीरिक मानसिक, भूख नहीं मिटती, और वो देखो कुत्ता क्या कर्म किया, हे नारायण देखो कैसा सुख से उजीता है। संत जी का, अच्छा तू ये बताओ, मैंने कुछ साधना किया, मेरे पास एक शक्ति है, तू मरने की बात क्यों कह रहा है? तू अभी देन देन तू, तेरे को कुत्ता बना देता हूं और वो कुत्ता तेरे जगह मनुष्य बन के बैठेगा, तू तैयार है तो बोल। नारायण, वो कुत्ता, वो भिखारी, खुद को समझ करके विचार कीजिए, आप चाहेंगे क्या? कितने भी कष्ट हो हमारे पास, हम पशु बनना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर उस पशु, कितने भी सुख से हो, उससे ज्यादा आनंद और क्रिया आपके पास है। और तो इसीलिए पशु से जब आप मनुष्य तक पहुंचे तो ये आपने देवभूमि तक जाने की एक मध्य स्थिति में आकर के पहुंचे। इसीलिए नारायण, कोई अगर ऐसा विषाद से ग्रस्त हो जाता है कि भाई हमारे जीवन में हम तो ऐसा बन नहीं सकते, नहीं, आप ही बन सकते हैं, आपके जीवन ही वो तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे आध्यात्म शास्त्र हमें शिक्षा देते हैं कि भाई जीवन भर ऐसा कुछ करो, जीवन के ऐसे कुछ प्योर बनाओ कि तुम्हारे अंदर जो सुख, शांति और आनंद भरा हुआ है उसको तुम निखार सकते हो, उसको तुम प्रकट कर सकते हो। इसीलिए भगवत भक्तजन, ये वासनाओं को पहले थोड़ा कंट्रोल, वासनाओं पर थोड़ा अंकुश और कामनाओं पर थोड़ा विजय अगर हम पा लेते हैं तो जीवन में ऐसा उपासना आप कर सकते हैं। शिव उपासना की विधि है। देखिए, कई बार मैं इसीलिए ये बता रहा हूं, कई बार हमारे तथाकथित वेदांतियों ने पूजा के ऊपर बड़ा कुठाराघात करते हैं कि अरे तुम क्या पूजा करते हो, क्या अरे तो मैं तो वेदांती हूं, मैं तो चिंतन करता हूं, वेदांत का मनन करता हूं। भगवत भक्तजन, कहीं अपने से ही ना धोखे में आप रह जाओ। ऐसा नहीं है। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, उपनिषद का मंत्र है, ध्यान भावस्तु मध्यम स्तुतिर जपो धमो भाव बाह्य पूजा धमाधम। जब हम क्रम को देखते हैं, उत्तम ब्रह्म सद्भाव, ब्रह्म का चिंतन मनन अगर आप कर रहे हैं तो वो सबसे उत्तम है। ध्यान भावस्तु मध्यम, जब आप ध्यान करते हैं वो मध्यम अवस्था है, मध्यम भाव है। स्तुतिर जपो धमो भाव उससे निकृष्ट है, स्तुति जप आदि। और बाह्य पूजा वो तो अधमाधम, देखो ये बहुतों को आनंद दिया हुआ, चलो बाह्य पूजा अधमाधम है, ये तो मैं नहीं करता, गलत है। उपनिषद के ऐसे खंडित अर्थ को न लेकर के थोड़ा देखिए। बाह्य पूजा धमाधम, इसका मतलब ये नहीं कि बाह्य पूजा अधम है, अधम से भी अधम है, इसको ना करो। उपनिषदकार सेकंड श्लोक में लिखते हैं, मनसी वशीकृत्य, इस शगुन उपासना में ही मन को पहले टिकाओ। सगुणम ब्रह्मसी लनात् तब तदेव आविर्भवेत साक्षात अपेतोपाधिकल्पनम। ये जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का आप चिंतन करोगे कब कर सकते हो, जब आपके मन इस सगुण साकार परब्रह्म में परमात्मा में जो आपके अनुकूल आकार है उसमें आप मन को लगाते हैं, इसी में मन को वश में करते हैं और फिर इसी उपासना के द्वारा ही आप निर्गुण निराकार तत्व तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए नारायण ये जो वेद विधि अनुसार जो पूजा पद्धति है इसको अनायास नकारना नहीं है, इसी के द्वारा आप अपने जीवन के उस तत्व साक्षात्कार को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये उपासना की चर्चा है, संसार को व्यवस्थित, संसार में अगर व्यवस्थित जीवन जीना चाहते हैं तो उनके लिए महाराज तीन चीजों की बहुत जरूरत है। पहला चीज है संपत्ति। आप लोग कुछ असहमत है तो आप बताइएगा मैं जो कह रहा हूं। संसार में व्यवस्थित जीने के लिए तीन चीज की आवश्यकता है, एक है संपत्ति, चाहिए कि नहीं, ये पहले। द्वितीय है, द्वितीय क्या होना चाहिए, हाँ वाह बिल्कुल ठीक, स्वस्थता, स्वस्थ शरीर हो। और तृतीय क्या होना चाहिए भाई, आप लोग सब संसारी है, आप लोग मत मैं भी ऐसा मत सोचना, तो आप विचार करके नहीं रखे कि हमको सुखमय जीवन लीड करना है और इसके लिए प्लान, बाकी प्लानिंग करते हैं और इस जीवन के लिए कुछ प्लान तो किया ही होगा, तो उस प्लान में सुखमय जीवन जीने के लिए क्या तत्व चाहिए भाई, सुखी होने का क्या क्लू क्या है, सत्संग। कितने लोग सत्संग किए नहीं, ऐसे जी रहे, कितने आनंद से जी रहे, शांति कहां से शांति आएगी, खरीदने को मिलेगा। तो पहला, फिर पहला संपत्ति, फिर स्वास्थ्य और थर्ड है नारायण समन्वय। समन्वय, समन्वय मीन परस्पर मिलाप, एक ही परिवार में रह करके अगर सब बिखरा हुआ है तो वो परिवार, इसलिए समन्वय की भी जरूरत है। तो संपत्ति, स्वास्थ्य, समन्वय, ये तीनों संयुक्त हो तो नारायण वो परिवार वो व्यक्ति सुखी है। अब इससे कुछ अलग आपके पास विचार हो तो आप जरूर हमको बताइएगा, हमारे ज्ञान को थोड़ा बढ़ाइएगा। पर तो मुझे जहां तक लगता है संसार में संपत्ति बहुत जरूरी है और उतना ही जरूरी है स्वस्थता, सुस्थ रहो, वो भी स्वस्थता मानसिक और शारीरिक। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ है परंतु मन से आप बड़ा दुखी है, बड़ा कंप्लेन है, बड़े शिकायत है समाज से, सोसाइटी से, परिवार से, फिर आप सुखी नहीं है। वो संपत्ति भी आपको सुख नहीं दे पाया, संपत्ति भी है और स्वस्थ भी है परंतु परिवार में समन्वय नहीं है महाराज, तो फिर वो परिवार भी सुख नहीं, सुखी नहीं हो सकते वो व्यक्ति वो परिवार। इसलिए ये तीन चीज महाराज बहुत जरूरी है और इन तीनों चीज में देखिएगा स्व संपत्ति के लिए भी आपको स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म विचार को लेकर के करना है, स्वस्थता के लिए भी आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर मेडिसिन देते बाहरी शरीर को स्वस्थ कर, परंतु आंतरिक मन बुद्धि की शुद्धि के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी तो बनना ही पड़ेगा, स्वस्थता के लिए और समन्वय के लिए एक दिव्य विचार हो, एक परस्पर भावनात्मक संपर्क हो, एक कामना वासनाओं को प्रधानता, आई एम द सेंटर, इस प्रकार से जीवन नहीं, अन्य के सुख दुख को भी विचार को भी सुनने का एक मानसिकता हो, तो ये थॉट्स, ये विचार आप कहां से आपको मिलेगा, स्पिरिचुअली अध्यात्म से। इसीलिए जीवन में तीन चीज को बहुत प्राधान्यता हम लोग देते हैं, और इन तीनों चीज को अगर जीवन में चाहिए तो कहते हैं स्तुति जपो पूजा भाव एतद्भी लभ्य मानव। ये तीनों चीज को अगर आप पाना चाहते हैं तो देखिए, आप कहेंगे कि भाई मैं पूजा करने बैठ जाऊं तो धन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। देखो यही तो गड़बड़ है, लिखते हैं भूति कामो ही हर्चयेत शिवम। अगर संपत्ति चाहिए, भूति चाहिए तो हमारा शिव का अर्चन करो। पुरुषार्थ और अर्चा, ये दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो शिव भगवान का अगर आप नित्य प्रतिदिन उपासना का पर्व है, सही ढंग से मन से विश्वास के साथ अर्चना करते हैं तो जो भी जरूरत है वो पूर्ण करते हैं। इसीलिए संपत्ति के लिए महाराज शिव उपासना बहुत जरूरी है। और आप लोग तो शिव महिमा में पढ़े हैं ना कि भगवान विष्णु भी भगवान शंकर की उपासना किए, हजार पद्म से कमल से, और एक कम हो गया महाराज तो फिर अपने आप नहीं निकलना, फिर तो मुश्किल है। अक्षी कमल से वो अर्चना किए और उसके फलस्वरूप उनको वो चक्र मिला, और उसी चक्र से ये त्रिभुवन को विश्व को वो चला रहे। उस स्तुति को मैंने वो महिमा में वो इसी प्रकार का वर्णन है। और उसके फलस्वरूप उनको क्या मिला महाराज? भूति कामा हर्चयत शिवम। महाराज लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी उनके पास आकर के बैठ गए। अब बताओ इसके ज्यादा और प्रमाण आपको क्या मिलना है? इसलिए शिव पूजन में वो समर्पण वो भाव हो तो व्यक्ति के जीवन में जो जरूरत है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थता तो मुख्य बात है कि भाई स्वस्थ जीवन, सुस्थ हो, जीवन में कोई रोग न हो, निरोगी हो, तो फिर वो व्यक्ति बड़ा सुखद जीवन जीता है। इसलिए भाभी मेटी सकही त्रिपुरारी, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ना कि भविष्यत को मिटाने वाले अगर कोई है तो वो है त्रिपुरारी। इसलिए आज आधी व्याधि जो भी आपत्ति विपत्ति है उससे अगर आप छूटना चाहते हैं तो संसार के लोगों के पास न जाकर के कहीं ऐसा विश्वास को जगाओ और उनसे प्रार्थना करो, देखो काम सफल होता है कि नहीं। और तृतीय है समन्वय। समन्वय वो है, देखो शिव जी के अर्चन में वो समन्वय आपके उनके परिवार की समन्वय है कि नहीं? भगवान शंकर के महाराज देखिए, देवी के जो वाहन है क्या है? शेर सिंह, और भगवान के वृष। दोनों में खाद्य खादक भाव है। वो कभी सोचा आपने? बताओ ऐसा तो शायद आपके परिवार में एक दूसरे को खाने के लिए नहीं तैयार है। अच्छा जाने दो, भगवान शिव के क्या है? सर्प। और उनके बेटा कार्तिक के पास? बताओ वो दोनों आपस में खाद्य खादक भाव है। मैं एक बार अपने गुरुजी के वो व्याघ्र चर्म होता ना जप करने के लिए, तो पता नहीं था वो धूप में देने के लिए बोला, तो मैं आकर के बड़ा लंबा चौड़ा है धूप में फैला दिए, धूप में इतना दूर फैला दी, गौशाला में बड़ा चित्कार और उधम मच गया, क्या बात है पता ही नहीं लगा। और क्या किया मैंने, बार बार झाड़ रहे ना इसको ऐसे करके धूप में दिया, तो गौशाला में सारे गौएं जो है बिल्कुल चिल्लाने लगे और अपने रस्सी चेन को एकदम इतना ये कर रहे। अचानक दौड़ करके गुरुजी आए ऊपर से, बोला तुम क्या करो, चलो चलो ले जाओ। मुझे बोला अरे ये शेर का छाल है ना, वो उनको लग रहा है, गायों को लग रहा है कि आ गया अब हमारा जीवन जो है, बताओ इतनी परस्पर विरोधी तत्व है परंतु किनके सामीप्य मात्र से सब मिल करके बैठे हैं महाराज। हाँ वो समन्वय जरूरी है। इसलिए शिव पूजन का महत्व समझ में आ रहा है ना। अगर अर्थ चाहिए महाराज तो पूजन करो, अगर महाराज स्वस्थता चाहिए तो पूजन करो, अगर महाराज समन्वय चाहिए परिवार में तो भी शिव पूजन करो, नहीं तो कोई और चारा। और इसीलिए भगवान शंकर की उपासना ही यहां आचार्य ने बतला रहे कि भाई देखो हे शिव, स्नात्वा प्रत्युष काले स्वपन विधि विधो, मैंने तो सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान करके आपके लिए गंगा जल गंगा तोयम पूजार्थम मैंने नहीं लाया, नारितम गंगा तोयम। देखिए जो प्रातः उठ करके आपके लिए गंगा जल मैंने नहीं लाया पूजार्थम, कदाचित बहुतर गहनात खंड बिल्वी दलानी, एक खंड बिल्लो पत्र भी हमने आहरण नहीं कर पाया, नानीता पद्म माला, न तो मैं पद्म माला संग्रह कर पाया, और सरस विकसिता गंध पुष्प तदर्थम। तीन चीजों को मुख्य करके बताया कि सुबह प्रातःकाल उठ करके मैं आपके लिए स्नान के लिए गंगा जल नहीं ला पाया, आपके स्नान के लिए एक बिल्व पत्र भी मैंने इकट्ठा नहीं कर पाया, और महाराज एक माला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुत कुछ आडंबर की जरूरत नहीं है, जीवन में अगर ये तीन भक्ति मुख्य है प्रेम, और उस भक्ति से अगर आप फल जल पत्र भी आप अर्पण कर दो, वो भगवान आशुतोष संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन बहुत सुंदर रूप से ये शिव पूजन का विधि बतला रहे हैं, मैं इसी को कल भी बताऊंगा। तो लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, शिव पूजन क्यों करना है, अगर परिवार में समन्वय चाहिए, परिवार में स्वस्थता चाहिए और परिवार में संपत्ति, ये तीन के बिना हमारा परिवार चल नहीं सकता है, इन तीनों की जरूरत है, तो शंकर की उपासना करो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।